एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है
और आज हम बात करने वाले हैं ओल्गा खजान की किताबों मी बट बेटर के बारे में। ये किताबें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हमारी सोच को वाकई चुनौती देती हैं।
बिल्कुल, हम सब कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा बेहतर तो बनाना ही चाहते हैं ना।
हाँ हाँ बिल्कुल,
पर अक्सर ऐसा लगता है कि या तो हम बदल ही नहीं सकते या फिर बाजार में जो सलाहें मिलती हैं वो बस हमारे लिए काम नहीं करती।
सही, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में सलाहें तो भरी पड़ी हैं, पर वो टिकाऊ बदलाव लाना वो एक पहेली जैसा लगता है अक्सर।
और शायद इसीलिए ओल्गा खजान का काम इतना दिलचस्प हो जाता है। वो यही सवाल पूछती हैं, क्या हम सच में अपनी आदतें अपना व्यक्तित्व बदल सकते हैं?
हाँ, और क्या इसके लिए हमें पूरी तरह से कोई और ही बनना पड़ेगा या फिर छोटे ज्यादा पर्सनल तरीके ज्यादा कारगर हो सकते हैं?
ये सवाल आज बहुत जहरमी भी लगते हैं क्योंकि इतने सारे लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर शायद सही तरीका नहीं अपना रहे।
बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखिका से। ओल्गा खजान है कौन और उनका नजरिया इतना खास क्यों है?
बताइए।
देखिए, ओल्गा खजान द अटलांटिक मैगजीन की एक जानी मानी स्टाफ राइटर हैं। वो ज्यादातर स्वास्थ्य, जेंडर और सोशल साइंस पर लिखती हैं।
अच्छा,
और उनकी पृष्ठभूमि भी दिलचस्प है, जर्नलिज्म और साइकोलॉजी दोनों में।
ओ, ये कॉम्बिनेशन तो वाकई अलग है।
हाँ, और यही उन्हें खास बनाता है।
हाँ।
उनमें एक पत्रकार वाला शक है, मतलब वो आसानी से कुछ मान नहीं लेती। लेकिन साथ ही बिहेवियरल साइंस यानी व्यवहार विज्ञान में उनकी गहरी रुचि भी है।
तो मतलब वो कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है जो बस दावे करती रहती हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक खोजी पत्रकार की तरह हैं। सबूत देखती हैं, विज्ञान की पड़ताल करती हैं। और एक और बात, उनका अपना अनुभव भी इसमें शामिल है। वो खुद बताती हैं कि वो शर्मीलेपन से जूझती रही हैं और अपनी किताबों में वो खुद पर प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाती।
अच्छा,
जैसे हाँ, मतलब एक तरह से ह्यूमन गिनी पिग बनकर देखती हैं कि ये सिद्धांत काम करते भी हैं या नहीं। उनकी असली ताकत यही है कि वो मुश्किल साइंटिफिक रिसर्च को असरल, समझने लायक और सबसे जरूरी, अमल करने लायक बातों में बदल देती हैं।
ये तो बहुत बढ़िया है। तो उनकी ये किताबें मी बट बेटर, इनका सार क्या है, मुख्य संदेश क्या देना चाहती हैं वो?
देखिए, दोनों किताबों का निचोड़ एक तरह से ये है कि ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपका व्यक्तित्व एकदम पत्थर की लकीर है। और ये भी भूल जाइए कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई एक जादुई फॉर्मूला है जो सबके लिए काम कर जाएगा।
ये तो बहुत कॉमन धारणा है वैसे।
हाँ बिल्कुल, खजान कहती हैं कि असली बदलाव आता है पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी से, ऐसी रणनीतियों जो विज्ञान पर आधारित हों, सबूतों पर टिकी हों और सबसे जरूरी, आपके अपने स्वभाव के मुताबिक हों।
ये दिलचस्प है क्योंकि हमें तो अक्सर लगता है कि भाई ये तरीका पॉपुलर है तो यही अपनाना पड़ेगा, चाहे वो हमारे लिए फिट हो या ना हो।
सही कहा। और खजान कुछ बड़े सवाल भी उठाती हैं, जैसे क्यों ज्यादातर सेल्फ हेल्प कोशिशें फेल हो जाती हैं।
हाँ, ये तो मिलियन डॉलर सवाल है।
बिल्कुल, और क्या हम अपने मूल स्वभाव को पूरी तरह बदले बिना भी बेहतर बन सकते हैं?
और उनका जवाब क्या है?
उनका जवाब है हाँ, बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। अपनी प्रकृति के साथ काम करना होगा, न कि उसके खिलाफ, और धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव करने होंगे।
अच्छा, धीरे धीरे।
हाँ, और एक बहुत ही पावरफुल आइडिया जो वो देती हैं वो ये है कि कर्म पहचान बनाता है, मतलब हमारे एक्शन हमारी सोच और पहचान को बदलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले सोच बदलेगी फिर एक्शन होगा।
ओह, ये तो उल्टा है जो हम आमतौर पर सोचते हैं।
बिल्कुल, और वो व्यक्तित्व को समझने के लिए अक्सर बिग फाइव मॉडल का जिक्र करती हैं।
बिग फाइव, वो क्या है?
ये पर्सनालिटी के पांच मुख्य आयाम माने जाते हैं। ओपननेस यानी नए अनुभवों के लिए कितना खुलापन है। कंसेंशियसनेस, आप कितने व्यवस्थित और जिम्मेदार हैं। एक्स्ट्रोवर्जन, कितने मिलनसार और ऊर्जावान। अग्रीएबलनेस, दूसरों के प्रति कितने सहयोगी। और न्यूरोटिसिज्म यानी इमोशनल स्टेबिलिटी या अस्थिरता का लेवल।
अच्छा, ये पांच चीजें।
हाँ, ये मॉडल हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अभी कहाँ हैं और अगर बदलाव चाहते हैं तो किस दिशा में जाना है।
ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। आपने कहा कि खजान पारंपरिक सेल्फ हेल्प पर सवाल उठाती हैं।
हाँ बिल्कुल, वो जिसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहती हैं, उसकी आलोचना करती हैं।
सेल्फ इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, भारी शब्द है।
हाँ, मतलब वो पूरी इंडस्ट्री जो सेल्फ हेल्प प्रोडक्ट्स और सलाहें बेचती है, खजान कहती हैं कि ये इंडस्ट्री अक्सर झूठी उम्मीदें जगाती है, ऐसे समाधान बेचती हैं जो दावा करते हैं कि वो सबके लिए काम करेंगे, पर असल में ऐसा होता नहीं है। और सबसे बड़ा मिथक जिसका वो खंडन करती हैं वो ये है कि हमारा व्यक्तित्व बदला ही नहीं जा सकता, कि हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
और वो कहती हैं गलत है।
हाँ, विज्ञान कहता है कि व्यक्तित्व में बदलाव संभव है, ये पत्थर की लकीर नहीं है।
तो अगर व्यक्तित्व बदला जा सकता है तो फिर शुरुआत कहाँ से करें, पहला कदम क्या हो?
ये हमें उनके दूसरे बड़े आइडिया पर लाता है, सच्ची आत्म जागरूकता और निजीकरण की ताकत।
सच्ची आत्म जागरूकता मतलब
वो जो ऑनलाइन क्विज वगैरह होते हैं ना, उनसे आगे बढ़कर खुद को वास्तव में जानना। हम अक्सर सोचते हैं कि हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर शायद उतना नहीं। खजान कहती है कि पहले गहराई से समझो कि तुम असल में हो कैसे।
और ये जानने के बाद
जब हम खुद को बेहतर समझते हैं तभी हम अपने लिए सही रणनीति बना सकते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कोई इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी, अब उसे जबरदस्ती किसी बड़े नेटवर्किंग इवेंट में भेज देना शायद काम ना करे। उसके लिए छोटे ग्रुप्स में मिलना या वन ऑन वन बात करना ज्यादा असरदार हो सकता है।
समझ गया, मतलब अपने स्वभाव के खिलाफ लड़ने के बजाय उसके साथ काम करना।
एग्जैक्टली।
लेकिन फिर इच्छा शक्ति का क्या, विल पावर? हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है कि बस इरादा पक्का रखो और हो जाएगा।
हाँ, और यहीं पर खजान तीसरा मिथक तोड़ती हैं, इच्छा शक्ति का मिथक।
इच्छा शक्ति भी एक मिथक है?
मिथक नहीं, लेकिन उस पर हमारी निर्भरता एक मिथक है। वो कहती हैं इच्छा शक्ति जरूरी है, पर वो एक लिमिटेड बैटरी की तरह है। अच्छा, हाँ, दिन भर में वो खर्च होती जाती है, खत्म होती जाती है, तो सिर्फ ये सोचना कि और जोर लगाओ और कोशिश करो, ये तरीका टिकाऊ नहीं है।
तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है?
कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल।
वाह।
वो इसे मजाक में कहती हैं अपने सबसे बुरे स्व के लिए डिजाइन करना।
मतलब
ऐसी व्यवस्था बनाओ, ऐसा सिस्टम बनाओ जो तब भी काम करे जब तुम थके हुए हो या तुम्हारा बिल्कुल मन ना कर रहा हो।
ये तो कमाल का नजरिया है। मतलब सिस्टम बनाना इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने से कहीं बेहतर है।
बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर कर्तव्य निष्ठा, कॉन्शियंशियसनेस बढ़ाने से जुड़ता है। आदतें बनाना, रूटीन तय करना, खुद को जवाबदेह बनाने के तरीके खोजना, ये सब सिस्टम का हिस्सा हैं।
ठीक है, तो हमने आत्म जागरूकता की बात की, सिस्टम बनाने की बात की, अब आगे क्या?
अब आता है एक्शन।
एक्शन,
हाँ, ये है चौथा आइडिया, कर्म और प्रयोग के जरिए व्यवहार बदलना।
कर्म और प्रयोग,
खजान एक्ट एज इफ सिद्धांत की बात करती है, यानी ऐसा व्यवहार करो जैसे कि, आप वो इंसान बन चुके हो जो आप बनना चाहते हो। मान लीजिए आप ज्यादा आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं।
हाँ।
तो इंतजार मत करिए कि कब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस होगा। खजान कहती हैं आत्मविश्वासी लोगों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दो।
वो कैसे?
सीधे खड़े हो, नजरें मिलाकर बात करें, अपनी बात रखें, भले अंदर से डर लग रहा हो।
अच्छा।
उनका तर्क है कि हमारा व्यवहार धीरे धीरे हमारी सोच और हमारी पहचान को बदल देता है। एक्शन पहले आता है, फीलिंग बाद में फॉलो करती है।
ये तो काफी रेडिकल आइडिया है,
है ना? और वो सलाह देती हैं छोटे छोटे प्रयोग करने की, स्मॉल बेट्स।
छोटे प्रयोग मतलब?
मतलब कोई बड़ा लक्ष्य बनाने के बजाय एक छोटा सा कदम उठाओ, कुछ नया ट्राई करो, देखो क्या होता है, नतीजा नोट करो, फिर तय करो कि आगे क्या करना है। एक तरह से साइंटिस्ट की तरह अप्रोच करो।
दिलचस्प, उन्होंने खुद भी ऐसा कुछ किया था?
हाँ, उन्होंने खुद इम्प्रोव कॉमेडी क्लास ली थी अपने शर्मीलेपन से निपटने के लिए, ये उनका अपना प्रयोग था।
वाह, तो ये एक तरह से खुद पर वैज्ञानिक प्रयोग करने जैसा है, परिकल्पना बनाओ, प्रयोग करो, डेटा देखो, सुधार करो।
बिल्कुल।
लेकिन क्या ये सब अकेले ही करना होता? हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, उनका कोई रोल नहीं होता?
बहुत अच्छा सवाल, और ये हमें पांचवें विचार पे लाता है, संदर्भ और माहौल की भूमिका।
कॉन्टेक्स्ट मैटर्स।
हाँ बिल्कुल, बदलाव सिर्फ हमारे अंदर की बात नहीं है, हमारे आसपास के लोग, हमारा माहौल, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखता है।
कैसे?
सोचिए, क्या हमें अपने दोस्तों और परिवार से सपोर्ट मिल रहा है? क्या हम ऐसे माहौल में हैं जो हमारे लक्ष्यों को बढ़ावा देता है या हमें पीछे खींचता है? खजाना सिचुएशन सिलेक्शन की बात करती हैं।
सिचुएशन सिलेक्शन,
हाँ, मतलब जानबूझकर ऐसे हालात और ऐसी संगत चुनना जो हमें बेहतर बनने में मदद करे।
ये तो समझदारी की बात है।
और साथ ही हमें ये भी सीखना होता है कि अगर कोई हमारे बदलाव का विरोध करे या मजाक उड़ाए तो उससे कैसे निपटना है, क्योंकि ऐसा भी होता है।
हाँ, ये तो होता है, ठीक है, ये समझ आता है। और आपने शुरू में बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स का जिक्र किया था, क्या खजान इन खास लक्षणों को बदलने के लिए भी कुछ कॉन्क्रीट रणनीतियां बताती हैं?
हाँ बिल्कुल, छठा विचार इसी पर फोकस करता है। वो बिग फाइव के उदाहरण लेकर दिखाती हैं कि ये सारे सिद्धांत, आत्म जागरूकता, सिस्टम बनाना, एक्ट एज इफ, प्रयोग करना, इन्हें कैसे लागू किया जा सकता है।
कोई उदाहरण दे सकती हैं?
जरूर। जैसे मान लीजिए कोई न्यूरोटिसिज्म से जूझ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चिंता करता है या नकारात्मक सोचता है,
हाँ,
तो उनके लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के सिद्धांत बहुत मददगार हो सकते हैं।
सीबीटी ये क्या होता है?
ये एक तरह की थेरेपी है जो हमें अपने नेगेटिव सोच के पैटर्न को पहचानने और उन्हें चुनौती देकर बदलने में मदद करती है। खजान बताती हैं कि कैसे इसके कुछ टूल खुद इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
अच्छा, और कोई उदाहरण?
या जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा एग्रीएबल है,
हाँ,
मतलब हर किसी की बात मान लेता है, ना नहीं कह पाता,
हाँ, ऐसे लोग होते हैं,
तो उन्हें सीमाएं तय करना सीखना होगा,
हाँ,
असर्टिवनेस बढ़ानी होगी।
हाँ,
इसी तरह अगर कोई अपना ओपननेस बढ़ाना चाहता है, नए विचारों, नए अनुभवों के प्रति खुलापन, तो वो नई चीजें आजमा सकता है, नई जगहें घूम सकता है, अलग अलग तरह के लोगों से मिल सकता है।
मतलब हर लक्षण के लिए कुछ ना कुछ तरीका है।
हाँ
हाँ,
ये सब उदाहरण बस ये दिखाते हैं कि बदलाव संभव है,
हाँ,
अगर हम सही पर्सनलाइज तरीका अपनाएं।
हाँ,
ये कोई फिक्स चीज नहीं है।
तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश या की टेकअवेज क्या होंगे इन किताबों से?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे जरूरी संदेश है पर्सनलाइजेशन, निजीकरण। सेल्फ हेल्प का कोई एक साइज सबके लिए फिट नहीं होता। आपको अपने लिए क्या काम करता है ये खोजना ही होगा।
सही। दूसरा क्या होगा?
दूसरा, खुद को एक प्रयोगकर्ता समझें, एक्सपेरिमेंटर बने। बदलाव को एक बड़े डरावने पहाड़ की तरह देखने के बजाय छोटे छोटे प्रयोगों की एक सीरीज की तरह देखें, टेस्ट करें, सीखें, अडेप्ट करें।
ठीक है, और तीसरा?
तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है अपनी प्रकृति के साथ काम करें, उसके खिलाफ नहीं।
ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी।
हाँ, आपकी इंट्रोवर्जन या आपकी थोड़ी सी डिसऑर्गेनाइज्ड रहने की आदत, ये कोई कमी नहीं है जिसे ठीक करना है। ये आपकी खासियतें हो सकती हैं। सवाल ये है कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और अपनी सीमाओं के आसपास कैसे काम करते हैं।
चौथा संदेश,
चौथा जो मुझे भी बहुत शक्तिशाली लगा, कर्म पहचान बनाता है। एक्ट फर्स्ट, थिंक लेटर।
हाँ,
सिर्फ सोचते रहने या मोटिवेशन का इंतजार करने से बदलाव नहीं आता, एक्शन लेने से आता है। जब आप अलग तरह से व्यवहार करते हैं तो धीरे धीरे आप अलग तरह से सोचने लगते हैं और आपकी पहचान भी बदलने लगती है।
और पांचवा?
और पांचवां, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन।
सेल्फ कंपैशन,
हाँ, बदलाव की राह आसान नहीं होती। गलतियां होंगी, आप फिसलेंगे, आप पीछे हटेंगे। उस वक्त खुद पर सख्त होने की बजाय थोड़ा रहम करें, थोड़ा दयालु बने।
क्यों जरूरी है ये?
क्योंकि यही दयालुता आपको वापस उठकर फिर से कोशिश करने की हिम्मत देगी। परफेक्शनिज्म अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, सेल्फ कंपैशन हमें दोबारा ट्रैक पर आने में मदद करता है।
ये बात शायद भारत जैसे समाज में और भी जरूरी है।
हाँ,
जहां अक्सर दूसरों की उम्मीदों का, परफेक्शन का बहुत दबाव होता है।
बिल्कुल, अपनी राह चुनना और उसमें अगर कभी असफल हो तो खुद को माफ कर पाना, ये एक बहुत बड़ी सीख हो सकती है।
हाँ, खजान की किताबों में कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम दिमाग में अटक जाती है ना, कुछ कोट्स जैसे। क्या हम कुछ ऐसे मुख्य विचारों पर थोड़ी और बात कर सकते हैं?
हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जैसे एक विचार है,
हाँ,
असली समस्या इच्छा शक्ति की कमी नहीं बल्कि उस पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना है। ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ ज्यादा कोशिश करो से बात नहीं बनेगी, हमें स्मार्ट तरीके खोजने होंगे, सिस्टम बनाने होंगे।
बिल्कुल। एक और जो मुझे बहुत पसंद है, आपका व्यक्तित्व सुधारने लायक कोई बग नहीं बल्कि लाभ उठाने लायक एक फीचर है।
वाह, ये कितना राहत देने वाला विचार है ना। हमें खुद को पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है।
सही कहा। और ये भी बहुत प्रैक्टिकल है, सबसे अच्छी योजना वो है जिसका आप असल में पालन करते हैं, ना कि वो जो कागज पर एकदम सही दिखती है।
हाँ, परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है कुछ ऐसा करना जो टिकाऊ हो।
बिल्कुल, ये हमें व्यावहारिकता सिखाता है, इम्पॉसिबल आदर्शों पर व्यावहारिकता।
और वो कर्म वाली बात उसे कैसे कहेंगे सरल शब्दों में?
शायद ऐसे, नए तरीके से सोचने के लिए नए तरीके से कार्य करें।
सीधा और सिंपल पर बहुत गहरा। एक्शन पहले, सोच बाद में बदलेगी।
तो अब सवाल ये उठता है कि सुनने वाले इन सब आइडियाज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण सोचें।
हाँ, सोचते हैं। जैसे सेहत को ही ले लीजिए। किसी मुश्किल एकदम रिजिड डाइट पर जाने के बजाय क्यों ना छोटे प्रयोग करें।
जैसे
क्या रोज 15 मिनट वॉक करना ज्यादा टिकाऊ है, या हफ्ते में 3 बार, या अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो शायद अकेले योग करना आपको किसी भीड़ भाड़ वाली जिम क्लास से ज्यादा रास आए। अपनी प्रकृति के अनुसार चुने।
बिल्कुल सही। या ऑफिस में देख लीजिए, प्रोडक्टिविटी का जो भी नया फैंसी सिस्टम ट्रेंड कर रहा है उसे आंख बंद करके अपनाने के बजाय सोचें कि आपकी अपनी स्टाइल क्या है। क्या आप लिस्ट बनाकर काम करते हैं या आप फ्लो में बेहतर काम करते हैं, उसके हिसाब से अपना तरीका बनाएं।
हाँ, और वो एक्ट एज अ वाला आइडिया।
हाँ, अगर मीटिंग में बोलने में झिझकते हैं तो उसका प्रयोग करें। तय करें कि अगली बार कम से कम एक सवाल पूछूंगी या एक कमेंट जरूर करूंगी, चाहे अंदर से कितनी भी घबराहट हो रही हो।
छोटा सा कदम।
हाँ, बस एक छोटा सा एक्शन। और अगर कोई बहुत ज्यादा हाँ कहने वाला है तो वो सीमाएं तय करने का अभ्यास कर सकता है। छोटी सी ना से शुरुआत करें।
और तनाव कम करने के लिए भी यही लागू होता है ना?
बिल्कुल। हो सकता है मेडिटेशन सबके लिए ना हो, कोई बात नहीं, अलग अलग चीजें ट्राई करें। जर्नलिंग, म्यूजिक सुनना, बागवानी करना, दोस्तों से बात करना, देखें आपके लिए पर्सनली क्या काम करता है।
और वो नेगेटिव विचारों के लिए CBT वाली तकनीक?
हाँ, उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़ें, फिर खुद से पूछें, क्या ये 100% सच है? क्या इसे देखने का कोई और नजरिया हो सकता है? थोड़ा सा उसे चैलेंज करें। इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख या सबसे राहत देने वाली बात है वो ये एहसास है कि बदलाव मुमकिन है, लेकिन ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। ये धीरे धीरे होता है, छोटे छोटे कदमों से। और सबसे अच्छी बात, हमें पूरी तरह कोई और बनने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मौजूदा क्षमताओं को थोड़ा और बढ़ाना है, थोड़ा बेहतर बनना है। वही मी बट बेटर वाली बात, खुद का एक बेहतर वर्जन।
हाँ, ये मी बट बेटर का कॉन्सेप्ट ही बहुत शक्तिशाली है। और मेरे लिए जो सबसे अहम बात दिमाग में रह गई वो शायद ये है कि असफलता को प्रयोग का हिस्सा मानना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
जब हम कुछ ट्राई करते हैं और वो काम नहीं करता तो ये हमारी नाकामी नहीं है, ये सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। ये हमें बताता है कि शायद ये तरीका हमारे लिए सही नहीं था, चलो कुछ और ट्राई करते हैं।
बिल्कुल।
इससे वो शर्म और झिझक कम होती है और हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं।
बहुत सही कहा, ये पूरी प्रक्रिया को कम डरावना बना देता है।
तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल या सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं।
जरूर।
अगर व्यक्तित्व स्थिर नहीं है और बदलाव छोटे कदमों और प्रयोगों से आता है, तो आज वो कौन सा एक छोटा बिल्कुल सेफ सा प्रयोग है जो कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, अपनी प्रकृति के साथ काम करते हुए उस दिशा में एक नन्ना सा कदम बढ़ाने के लिए जिसमें वो थोड़ा बेहतर बनना चाहता है।
सोचने लायक बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।